ओम शांति। तो बाबा के साथ सारा सुबंधों का जो श्रृंखला चल रही है, आज है बाबा मेरा सुप्रीम कमांडर है। तो बाबा हमारे में ऐसी कमांड भर देते हैं इस समय संगमयुग पर, जो फिर आधा कल्प को तो क्या पूरा कल्प ही चलती रहती है। वो जैसे सेना का कमांडर होता है तो अपनी सेना को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारी बातों से गुजारता है। वो कई कठिन प्रशिक्षण होते हैं, समय समय पर उनको अनुशासन सिखाता है, उनको हथियार चलाना सिखाता है, ड्रिल कराता है, फिर अपडेट रहना सिखाता है, सीमा का ज्ञान होता है, अर्थात उनका जो युद्ध क्षेत्र है कहाँ कहाँ से जाना है, शत्रुओं का आक्रमण किस तरीके से होता है, या खुफिया तंत्र भी होता है उनका, वो सारी जानकारी रखनी पड़ती है। तो बाबा हमारा सुप्रीम कमांडर है। बाबा को पता है कि हम बच्चों को शत्रुओं ने कितनी बुरी तरीके से घेर के रखा था। तो एक एक जो इस सेना का सैनिक है, कमांडर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो सेना में चयन होता है तो ऐसे नहीं होता है, वो बहुत सारी बातों से उनको देखा परखा जाता है। चयन होने के बाद फिर बहुत सारे आगे उनके स्टेप बाय स्टेप उनके प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, ताकि उनकी जो युद्ध करने की क्षमता वो विकसित हो सके, समय पर वो हथियार चलाना सीख सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले उनको अनुशासन सिखाया जाता है। वैसे भी देखते हैं जो फौजी लोग होते हैं बड़े अनुशासित होते हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी उनके वो संस्कार जाते नहीं है। घर में आकर वो इस पूरा आदेश निर्देश वैसे ही देते हैं जैसे वो फौज में थे। कोई इक्का दुक्का होंगे जो घर वाले व्यवहार के अनुसार ढले, अधिकतर नहीं तो वो उसी अनुशासन के अनुरूप चलते रहते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक उसी तरह बाबा ने हम सबको भी ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुशासन में बांधा हुआ है। नियम मर्यादाएं क्या हैं, अमृत वेले से रात्रि तक सोना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बोलना कैसे, व्यवहारिकता कैसी है, रहन कैसा है, खाना पीना कैसा है, अनुशासन पूर्वक। तो अनुशासन जो है ये हम सबको मर्यादित बनाने के साथ साथ सशक्त भी, शक्तिशाली भी बनाता है, एक्टिव रखता है, अलर्ट रखता है, और उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे दिनचर्या पर भी पड़ता है, हमारे जीवन पर भी पड़ता है। बहुत सारी बातों से फिर सेफ रहते हैं हम। तो अनुशासन, जैसे सुप्रीम कमांडर ने भी हम सबको एक अलौकिक अनुशासन में बांध के रखा हुआ है। फिर अनुशासन के बाद ड्रिल कराते हैं वो कमांडर। जैसे वो ड्रिल कराते हैं तो ड्रिल डेली होती है, चाहे धूप हो, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, तूफान हो, लेकिन उनको ड्रिल करनी होती है, ताकि वो उनका जो खून है हमेशा गर्म रहे, मांसपेशियां ठंडी ना पड़ जाए, उनका खून खौलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो खून ठंडा पड़ गया तो युद्ध पर जाएंगे कैसे वो, इसलिए उनको थोड़ा ड्रिल करानी पड़ती है। और जो जी रह ना सके वो, ऐसा वो नशा हो जाता है ड्रिल का भी, फिर बाद में भी करते रहते हैं। तो ड्रिल उनके शरीर को, उनकी शारीरिक बलिष्ठता, शारीरिक मजबूती को कायम रखने के लिए ड्रिल हमेशा करनी पड़ती है। तो बाबा भी हम सबको ड्रिल कराते हैं। ड्रिंक भी होगा, ड्रिल भी होगी, वो ड्रिंक बाद में कराते हैं, ड्रिल के समय ड्रिंक नहीं कराते। तो बाबा हम सबको ड्रिल कराते हैं, साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी, ये ड्रिल हमें करती रहनी, ताकि हमारा जो मन शक्तिशाली रहे, करते रहना है। ड्रिल के बाद फिर उनके खान पान का भी, उनका खाना पीना भी ऐसा ही होता है, मजबूत होता है, ताकि उनकी जो मजबूती कायम रहे। नहीं तो युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो दुबले पतले काम नहीं कर पाएंगे वहां, उनको दौड़ने की क्षमता चाहिए। वैसे भार उठाकर उनको दौड़ाया जाता है तो उसके लिए शारीरिक शक्ति भी चाहिए, तो खाना पीना भी उसी तरीके से होता है। तो बाबा हम सबको कौन सा भोजन खिलाते हैं? गर्म गर्म हलवा खिलाते हैं, चौब चीनी खिलाते हैं, समर्थ संकल्पों का भोजन है, त्रावटी माल खिलाते हैं। और ये भोजन कहां से प्राप्त होता है? मुरली से प्राप्त होता है। तो ये शुद्ध भोजन है, सात्विक भोजन है, जो आत्मा को सतो प्रधान बनाता है। तो ये जो खान पान का भोजन है, ये भी हम सबको उसका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो आत्मा कमजोर रह जाएगी। इसलिए जितना हो सके हमें अपने पास समर संकल्पों का खजाना, शक्तिशाली संकल्पों का भोजन, और खाना भी थोड़ा लिमिट का ही होता है। ऐसा नहीं हो आकंठ भोजन कर ले, वो दौड़ी ना सके पहुंची। तो हर कंडीशन में उसको, हाँ, वो हर पर्यावरण उस माहौल मौसम के अनुकूल उसको ढाला जाता है, ताकि वो बर्फीले इलाके में रहे या कहीं धूप वाला इलाका है, गर्मी वाला इलाका है, तो दोनों तरफ से उसकी बॉडी को ढाला जाता है। ऐसे आजकल अनेक तरह के प्रशिक्षण होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका सामना करने में सक्षम होते हैं। जहां कुछ खाने को नहीं मिले वहां भी काम करना होता है उनको, जहां कुछ है ही नहीं हो उनको पकड़ के अगर सांप ढूंढ के खाना होता है, ऐसा भी प्रशिक्षण है। एक कोबरा सेना है, कोबरा सेना, उनको जंगलों में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, कुछ भी खाने को नहीं है, सांप मिलेगा सांप को खाना उनको, ऐसा भी है। तो ऐसे सांप जैसी हमारे सामने परिस्थितियां आ जाएं, तो उनमें भी हमको ढलना है ना। तो क्या कह रहे थे, पीने का केवल पानी बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, जो बर्फीले इलाकों में जहां आप देखिए लद्दाख की जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उस तरफ जो जाते हैं, ये अपना जम्मू कश्मीर में, तो वहां पानी कितना 50 डिग्री से ऊपर माइनस में टेम्परेचर चलता है। एक बोतल निकालना पड़ेगा, कई दिन नहाना भी नहीं मिलता है। ऐसे ब्राह्मण जीवन में कई दिन नहाना मिले ना मिले तो क्या होगा, तो भोजन करने का ही नहीं, नहाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, नहाए भी ना रह नहीं सकते। कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी, तो उसमें एक व्यक्ति है, वो भोजन खाता है लेकिन वो आउटलेट नहीं है उसका कुछ भी, वो हवा ही हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है वो। उसको बीमारी हुई, पता नहीं क्या चीज है वो। तो ये तो स्थूल चीजें हैं, लेकिन हमको सूक्ष्म में जितने भी विकटतम परिस्थितियां हों, कठिन परिस्थितियां हों, प्रतिकूल हों, उन परिस्थितियों में हमें अपनी स्थिति को मजबूत रखना है। जैसे बताया डिटैचमेंट, मना कर्म से डिटैच नहीं होना, लेकिन उस स्थिति में भी हम सबको उस तरीके से अपने आप को ढाल के रखना है। तो ये खान पान भी हमारा इस तरीके से हो ताकि हम इस ब्राह्मण जीवन का पूरा आनंद ले सके। इसी तरह फिर फौजियों को जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, हथियार होते हैं, तो वो भी उनके पास पूरे होने चाहिए। उनके चलाने का जो तरीका है, प्रशिक्षण है, वो भी ठीक तरीके से होना चाहिए। अगर ज्ञान है और समय पर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो होते हुए जैसे भी नहीं है। इसी तरह फौजी जो है वो अस्त्र शस्त्र हैं, तो बाबा उनको जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, और हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? योग धारणा और सोमान, मुरली का मनन चिंतन, ज्ञान की चर्चा करना, होमवर्क करना या होमवर्क देना, ये भी है। तो ये हमारे हथियार हैं, अगर हम इन हथियारों से दूरी बनाकर रखेंगे तो भी समय पर काम नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में कई बार कहा कि तीव्र पुरुषार्थी वही है जिसको समय पर ज्ञान का बिंदु, ज्ञान का पॉइंट याद आ सके। अगर ज्ञान का पॉइंट याद नहीं आया, समय पर फाइल कहाँ रखी है याद ही नहीं आए, और केस सारा ऐसे निकल जाए, तो फिर उसका क्या फायदा। और हथियारों के साथ साथ उनको अपडेट भी रहना पड़ता है उनके साथ। ऐसा नहीं पुराना हथियार हो, जंग की लग जाए, उसको चला ही नहीं। तो यहां भी हमको अपडेट रहना पड़ता है, पुराने तरीके से ज्ञान को आत्मसात करते रहे और वो हमारे जीवन में दिखाई ना दे कुछ भी, तो उसका अभ्यास करते रहना। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अर्थात नए नए तरीके से ज्ञान को अप्लाई करने का हमको अभ्यास करना है, क्योंकि संसार अपडेट हो रहा है। अगर पुराने तरीके से सुनाएंगे आत्मा गुष्ठे मिश्रल है, जैसे बाबा ने शुरुआत में कहा थे, लेकिन आजकल थोड़ा कहते हैं बाबा भी, तो बाबा भी हमारा अपडेट रहता है, सुप्रीम कमांडर, और हमको भी अपडेट करता है। तो वो अनुभूति करने के लिए आज के इस बदलते परिदृश्यों को, बदलते समाज को देखते हुए हमें स्वयं को भी अपडेट रखना होगा, ताकि सामने वाले को भी हम ज्ञान से तरीके से रोचक तरीके से सुना सके, ताकि हम सामने वाले को परख सके इसको क्या चीज चाहिए। ऐसे नहीं जो हम डेली सुना रहे हैं वही उसको चाहिए, जरूरी नहीं है, उसको जो चाहिए हमको उतना सुनाना, कई होते हैं उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो दूसरा चुटकुला सुना दो उससे खुश हो जाएगा। तो ये अपडेट भी रहना जरूरी होता है। फिर उसके बाद उनका खुफिया तंत्र भी होता है, दुश्मन कहां कहां से अटैक कर सकता है, कहां कहां से आक्रमण कर सकता है, उसका सारी जानकारी होती है उनको। तो उसी तरह से हम, हमारा खुफिया तंत्र कौन सा है? अटेंशन और जो अटेंशन और चेकिंग, जो हमारे अंदर सूक्ष्म शत्रु हैं, जो किसी को नहीं दिखाई दे रहे, वो हमको ही बताए, और उनको समाप्त करने के लिए हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ चाहिए, एकांतरिक पुरुषार्थ चाहिए, अंदर की साधना चाहिए। अगर हमारी वो नहीं है तो वो जो सूक्ष्म हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं हमें खाते रहेंगे घुन की तरह। फिर अंत में देखेगा बाहर से वृक्ष तो अच्छा दे रहा है लेकिन अंदर से खोखला हो जाएगा। तो स्वयं के ऊपर पहली नजर, इसलिए कहते हैं दूर की दृष्टि उतनी नजदीक की दृष्टि कमजोर ना हो जाए कहीं हमारी, अर्थात स्वयं को देखने की दृष्टि हमारी हमेशा कायम रहनी चाहिए। तो ये खुफिया तंत्र भी हमारा ठीक होना चाहिए, दूसरों की सेवा करते करते अपनी स्थिति डाउन ना हो जाए। तो ये कुछ एक चीजें थी जो समय की सीमा में हमको बांध के रख दिया, इतना सुनाएंगे बाकी बाद में। ओम शांति।
ओम शांति। जो रिलेशनशिप वाला चल रहा है उसमें हमारा संबंध है बाबा के साथ, बाबा बिजनेसमैन है, तो कोई भी हम बिजनेस में हाथ डालते हैं या बिजनेस करने का आरंभ करते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण हमें जानकारी होना चाहिए, तभी हम उस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो बाबा जो आया है वो बिजनेस करने आया, सौदा करने के लिए। तो जो बाहर के जो बिजनेसमैन होते हैं वो कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो किसी को गाड़ी का बिजनेस करना है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर, तो उस गाड़ी के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी गाड़ी की चलन है, उनका इंजन कैसा है, उनकी गारंटी हम कितने साल तक दे सकते हैं। तो जब तक उसके बारे में अच्छा सा ज्ञान नहीं है तब तक हम कस्टमर को उसके बारे में बता नहीं सकते। तो वैसे ही बाबा परम धाम से हम आत्माओं को पति से पावन बनाने के लिए आया, तो आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान है बाबा को, उसके बारे में किसी के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बाबा को। आज तक जितने भी ज्ञान संसार में दिए लेकिन आत्मा का संपूर्ण ज्ञान किसी ने नहीं दिया। अगर किसी ने लव की पाठ पढ़ाई, किसी ने संयोग का पाठ पढ़ाया, लेकिन आत्मा का पाठ किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक। लेकिन स्वयं भगवान आकर आत्मा का पाठ पढ़ाए कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, इस रंगमंच में किसी का भी कोई दोस्त नहीं। इसलिए हम उसकी बात को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ऐसा ज्ञान देता है जो हर क्लियर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होता। अगर डाउट भी होता है तो बाबा अगली बारी उसको क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले जो बाबा है संपूर्ण ज्ञान का सागर है, अर्थात उसको आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान है। दूसरा होता है व्यवहार, जो बिजनेसमैन होता है उसका व्यवहार बहुत कुशल होना चाहिए, तभी वो उससे कस्टमर आकर्षित होता है। अगर वह कस्टमर को लुभा नहीं सकता तब तक वह अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। और उसे लुभाने के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, उससे अच्छा बात करे, उसके बारे में जाने कि उसको कौन सा माल चाहिए या किस क्वालिटी की गाड़ी चाहिए। अगर वो बिजनेस गाड़ी का करता है वह अपने बिजनेस के बारे में अच्छा बता सके कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, किस रेंज का गाड़ी चाहिए, मीडियम या हाई क्वालिटी। तो उसी प्रकार हम जब बाबा के ज्ञान में प्रवेश करते हैं तो हरेक आत्मा दुख और अशांति से पीड़ित होता है, हरेक को सच्ची शांति और सुख की कामना से हरेक कहीं ना कहीं संस्था, मंदिर, मस्जिद में जाते। लेकिन जैसे ही हम बाबा के ज्ञान में कदम रखते हैं, गीता पाठशाला, सेंटर या मधुबन, तो हरेक भाई बहनों का यही अनुभव होता है, कुछ ऐसा अलौकिक अनुभव होता है कि जीवन में एक कमिट छाप छोड़ जाती है जिसको भूलना बहुत आसान नहीं होता। तो सच्चा सुख और सच्ची शांति जो आत्मा को चाहिए वो अनुभव होती है, इसलिए वो प्यार में आत्मा बंध जाती है और बंधने के कारण उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेती है। तो वो कहता है कुशल व्यवहार, उच्च कोटि का व्यवहार, तभी वो आत्मा उस दूसरे से संपर्क में रहती है। नहीं तो कस्टमर जो होता है वो हर अच्छे दुकानदार को खोजने चाहता है जिससे उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहे। तो जैसे हम बाबा के ज्ञान में आते हैं तो बाबा से हम इतना जुड़ जाते हैं, जो भी चाहिए आत्मा को वो निस्वार्थ आत्मा को मिलने लगता है। इसलिए भगवान के प्यार में हम उनके बताए हुए श्रीमत पर चलना सहज भाव से स्वीकार करते हैं। तीसरा होता है अनुशासन। जो सौदागर होता है, बिजनेस होता है, अगर उसके बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके जीवन, उसके जो शॉप होता है उसमें अनुशासन होना बहुत जरूरी है। टाइम पे दुकान खोलना, टाइम पे बंद करना, जो भी दुकान के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना, नहीं तो वो बिजनेसमैन अच्छा से चला नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो लॉस हो जाएगा और डूब जाएगा, एक दिन उनका शॉप बंद हो जाएगा। तो बाबा भी जैसे इस धरा पर आए तो अपने श्रीमत का अनुशासन दिए हमें। अगर हमारे जीवन में श्रीमत नहीं है तो आज हम ब्राह्मण हैं तो कल क्या हम क्या रहेंगे कुछ भी पता नहीं जी। तो इस तरह से हम हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा की जो भी श्रीमत है सवेरे से शाम तक जो सुशील भाई ने बताया उसे हमें सहज भाव से पालन करना है, तभी हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन हम ब्राह्मण बन के रह सकते हैं। ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है कि शुरू से लास्ट तक हम ब्राह्मण बन के रहे, नहीं तो लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल ब्राह्मण रहते फिर उसके बाद इस्तीफा दे देते ब्राह्मण जीवन से। हाँ, धर्म बदली कर लेते, धर्म परिवर्तन हो जाता है। हाँ जी, तो इस तरह से जब तक हम बाबा की श्रीमत में हैं तब तक हम सेफ हैं, अर्थात हम बिजनेसमैन अच्छा कर सकते हैं। जहाँ बिजनेसमैन अगर असफल होता है उसका मेन कारण यही होता है कि उनके जीवन में अनुशासन नहीं होता, वो अपने कस्टमर का देखभाल अच्छा से नहीं करता, उस कस्टमर को क्या चाहिए उसका ध्यान नहीं देता। इसी प्रकार बाबा भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई श्रीमत नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, या व्यक्तिगत कोई रूल नहीं है हमारे लाइफ में पुरुषार्थ करने का कि हमें इस तरह से पुरुषार्थ करना है, तो आज भी हमारा आज ब्राह्मण है कल जा सकते हैं। कल जा सकते हैं मतलब कल, मतलब आने वाला कल, कभी भी जा सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, माला देवताओं की बनती है। चौथा पॉइंट है, अगर हमें अपने बिजनेस को विस्तार करना है तो इमरजेंसी फंड होता है, उसको जमा करके रखना पड़ता है बारी बारी से ताकि हम बिजनेस को विस्तार कर सकें। तो वैसे ही जब बाबा इस धरा पर आए तो इस ज्ञान संपूर्ण विश्व की आत्माओं के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है। तो बाबा ने 14 साल तपस्या कराए, ऐसी आत्माओं को तैयार किया जो विश्व के आगे आधार और उद्धार मूर्त बने। तो वहां तपस्या करके फिर भारत मिलाए, फिर बाबा ने एक एक की ड्यूटी लगाए कि आपको इस स्टेज में जाना है, ज्ञान देना है। तो ऐसे उदाहरण बनाए उसको कि वो भगवान के ज्ञान को विश्व के आगे सुना सके। इसके लिए उसको तपस्या करनी पड़ी ताकि थोड़ा थोड़ा करके, क्या तपस्या की, आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक अभ्यास का, क्योंकि आज तक ये वाली तपस्या किसी ने नहीं की, व्यक्तिगत के लिए पुरुषार्थ किया, लेकिन यहाँ का जो पुरुषार्थ था वो संगठन में था और एक दूसरे को देख कर किया उसने, ताकि हम संगठन में रहते हैं तो एक दूसरे का हमें संस्कार देखने को मिलता है। जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं तो फिर हम स्वीकार नहीं करते, जितने भी जो तपस्वी वो व्यक्तिगत पुरुषार्थ किए, इसलिए वो सफल नहीं हो सके अपने पुरुषार्थ में। और हम जब यूनिटी में पुरुषार्थ करते हैं तो हमें एक दूसरे का संस्कार देखने को मिलता, तो धीरे धीरे आत्मा स्वीकार करना शुरू करती, क्योंकि एक साथ स्वीकार नहीं कर सकती आत्मा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे सामने वाला भी रहे। तो चीज तो धीरे धीरे करके वो आत्मा उस चीज को स्वीकार करने, और जब वो संपूर्ण रीति से हर चीज को स्वीकार करना सीख जाती है तब वो सेवा के फील्ड में जाकर सफल हो सकती है। तो वैरायटी तरह के संस्कार वाली आत्माएं होती है हमारे सामने। तो जो उन आत्माओं ने बाबा से शक्ति लेते उन शक्ति और अनुभव को अन्य आत्माओं तक पहुंचाए। तो इस तरह इमरजेंसी फंड भी होता है जो छोटे छोटे करके वो बिजनेसमैन अपने लिए जमा करके रखता है, फिर उसको बिजनेस को अगर विस्तार करना है तो उसको यूज करते हैं। एक होता है लास्ट में होता है कि अपने जो कर्मचारी होते वर्कर्स होते उसका भी हमें ध्यान रखना होता है, ऐसे नहीं कि हम बिजनेसमैन हैं तो हम जो चाहे वो मर्जी कर सकते हैं। तो हम भी भगवान के सिलेक्ट किए हुए वर्कर्स हैं जो भगवान का मैसेज देने का काम करते हैं। तो बाबा भी बीच बीच में जिस तरह का डोज हमें चाहिए, खुराक चाहिए, कभी प्रेम के ऊपर मुरली चलाता है तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को वैराग्य की बातें बिल्कुल पसंद नहीं, हमें वैराग नहीं चाहिए, हमें केवल प्रेम की बातें अच्छी लगती है। तो इस तरह की हर एक क्वालिटी की आत्माएं होती है। तो बाबा हर एक को देखकर, किसी को प्रेम अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है, किसी को संपर्क अच्छा लगता है, तो हर एक तरह के बाबा के बच्चे होते हैं। किसी को शांति की मुरली अच्छी लगती है, किसी को सुख की बातें अच्छी लगती है। जी हाँ, किसी को तो फिर पता कैसे चलेगा उसको, है? तो इस सेवा हाँ वो बाद में पता है। तो इस तरह से बाबा हर एक आत्मा की ख्वाहिश को पूरी करता है। इस तरह वैरायटी मुरली होती है। तभी तो कहते हैं आज की मुरली अच्छी थी, कोई कहता है आज की मुरली अच्छी थी, कोई तो मुरली तो सभी अच्छी है, लेकिन वो आत्मा की पसंद होती है। इसलिए वैरायटी तरह की बाबा हमें ध्यान में रखकर इस तरह से मुरली चलाते हैं। ओम शांति जी। हाँ ओम शांति।
ओम शांति। जो सर्व संबंधों का जो सीरियल चल रहा है श्रीच, उसमें बाबा मेरा हितेशी है, हितेशी अर्थात शुभ चिंतक। तो बाबा जैसा शुभ चिंतक तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। थोड़ा बहुत तो बाबा हम सबको बाबा की शुभ भावना और शुभकामना के कारण से ही हम सब बाबा के बच्चे बने हैं। इसीलिए बाबा अमृत बेले से लेकर के रात्रि तक हम सबके प्रति क्या आस रखता है, क्या उम्मीद रखता है, क्या उसकी चाहना है, और मेरा बच्चा क्या बन जाए और सबके आगे एक सैंपल बन जाए। बाबा की यही रहता है कि सुबह से जैसे कि अमृत बेला होते ही बाबा आगे पीछे घूमते रहते हैं कि बच्चा जल्दी उड़ जाए और फटोफट, है ना, बाबा के कमरे में पहुंच जाए और बाबा से सारी शक्ति ले, करंट खींच ले, और सारी दिन भर में जो भी समस्या परिस्थिति जो आ रही थी आती है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। और जहाँ भी जो क्लास शुरू होती है तो बच्चे फटोफट, है ना, क्लास में पहुंच जाए, आगे बैठ जाए और फिर बाबा की सारी मुरलियाँ लगन से मगन होकर के सुने। और हाँ हाँ, जो भी इस प्रकार की स्मृति जब आती है तो और सारी समस्याएं तो होंगे नहीं। तो बाबा ने कई सारे तरीके भी बताए हैं मुरली सुनने के लिए कि इस तरीके से मुरली सुनोगे तो ग्रहण शक्ति बढ़ेगी। तो बाबा ने बोला है कि बच्चे तुम मुरली तभी ग्रहण कर सकोगे जब तुम मैं परम धाम की बातें करता हूँ, है ना, तो परम धाम पहुँच जाए। सूक्ष्म बतन की बातें जब मैं करता हूँ तो सूक्ष्म बर्तन में पहुंच जाए, सूक्ष्म बर्तन का पूरा पिक्चर तुम्हारी बुद्धि में आ जाए। सतयुग का जब मैं बातें करता हूं तो फिर सतयुग में पहुंच जाए। जैसे जैसे करके बाबा ने हम सबको द्वापर की बातें करते हैं तो भक्ति कैसे आरंभ हुई उस तरीके के वहां पहुंच जाए। कलयुग की जो कई प्रकार की नवदा भक्ति की बातें करते हैं तो नौ प्रकार की जो भक्ति हम लोगों ने करके बाबा के बच्चे बने, है ना, इतने कठिन भक्ति को से गुजरते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो इस तरीके से जैसे हाँ जैसे कि माया की बातें आती है तो भी हम वहां पर पहुंच करके उसको चैलेंज कर सके। कल हमें फेल कर रहा था, आज देख फेल करके तो देख, है ना। तो बाबा ने मुझे इतनी ऊर्जा भरा है, इतनी शक्ति भरी है, तो हम दोबारा तुम्हारे फंदे भी फंसने वाले नहीं। इस तरीके से बाबा ने हम सबको, इसीलिए बाबा इतना शुभ चिंतक है, हितैषी है, कि उसके कारण से ही हम सब इस संसार में आज उसको उसकी बातों को समझ पाए हैं, उसकी बातों को जान पाए हैं। और धीरे धीरे बाबा ने जो लक्ष्य रखा, जो उद्देश्य रखा, जो बाबा का थीम है संपूर्ण संपन्न बना करके ले जाना, तो उसी के आधार से हम धीरे धीरे खड़े उतरते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा जहाँ भी होता है कि मेरा बच्चा थोड़ा आगे निकल जाए और उसे, है ना, तो बाबा को यही रहता है। तो इसका मतलब यही है कि बाबा हम सबको कि क्योंकि बाबा ने बोला है कि यह ज्ञान ऐसे रूखा सूखा नहीं है, कि यह ज्ञान इतना सुंदर है, इतनी अच्छी है कि 24 घंटा हम बिजी रह सकते हैं। और निरंतर 24 घंटा योग लग जाए ऐसी बातें नहीं है। तो इस सारी चीजें बाबा ने हम सबको बताए हैं कि कहीं भी गैप न हो जाए। तो हर समय हर घड़ी बाबा कोई न कोई तकनीक हम सबको बताते रहते हैं। तो इसके कारण से जैसे कि ज्ञान को हम समझ भी सके और ज्ञान को हब भी कर सके, और जो ज्ञान अंदर जाती है तो उसका रिजल्ट दिखाई भी दे। तो हर दिन हम जो पहले जिस भी परिस्थिति और समस्या से हम डरते थे उससे हमको जैसे फाइट करनी पड़ती थी, स्थिति समय पर संभाला नहीं जा सकता था, आज धीरे धीरे हम सब इस बात को इतना समझदार बन गए। तो ये बाबा हम सबको शुभ भावना और शुभ चिंतक हितेशी मित्र होने के कारण से ही हो रहा है। इसीलिए बाबा के जो शुद्ध संकल्प हम तभी कैच कर सकते हैं जब हम उसके प्रति भी इतनी ऊंची नजर और ऊंची भावनाएं हैं कि बाबा हमारा कभी भी हमको एक पल भी हमसे बाबा दूर नहीं हो सकता है, और बाबा की सारी बातों को उतारना मेरा जीवन का हिस्सा बन जाए, यही हमने दृढ़ संकल्प भी रखा है। इसीलिए इतना प्यारा और इतना सुखदायी हित है ना मित्र, जो संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। संसार में जो मित्र होते हैं ना तो उनको पता लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो दुश्मन बनने में देरी नहीं लगता है, लेकिन बाबा कभी भी हमसे दुश्मनी नहीं लेता है और कभी भी बाबा हम सबको इस प्रकार के संकल्प ही नहीं कर सकता है। बाबा के संस्कार ही नहीं है कि बच्चों को कभी ऐसा करे। लेकिन संसार में आज हजारों ऐसी घटनाएं देखे हैं कि मनुष्य पहले मित्र बनते हैं, शुभ चिंतक बनते हैं, लास्ट में जाकर वो फंदे बन जाते हैं और जीवन को धराशय करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है पहले मित्र बन के हाथ बढ़ाते हैं, शुभ चिंतक बन करके लास्ट में फंदे लगाने के लिए भी निमित्त बन जाते हैं। लेकिन बाबा हमारा इतना स्वीट है, इतना मीठा है कि सारे फंदों से छुड़ा देता है। इसीलिए बाबा हमारा हितेशी है, शुभ चिंतक है। कभी भी उसके शुभ चिंतक के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए हम ये लक्ष्य रखें कि बाबा को पल पल है ना स्मृति में बनाए रखें और बाबा हमारा जिगर में समा जाए, यही हमारा लक्ष्य और ये उद्देश्य होनी चाहिए। और बाबा को इसी कारण से किसी भी संबंधों में डाला जा सकता है, इसी कारण से वो हमारे हितेश है, शुभ चिंतक है। ओम शांति।
ओम शांति। वो टॉपिक मिला है स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में। स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में भाई साहब ने बोला है, डॉक्टर साहब ने, मैंने बहुत बार मैंने इंटुमा कर दिया इसमें, जो भी टॉपिक मिलता है ना हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बाजी करके एस्केप करते थे। हीलिंग माना क्या होता है? आरोग्य कारण। एक्चुअली हर व्यक्ति आजकल हीलिंग के बारे में बहुत जानकारी सोचते हैं, कुछ टी करना, चेकअप हो जाना, कुछ गाँव हो जाए तो टी करने के लिए हीलिंग करते हैं। हीलिंग के लिए हर एक व्यक्ति शरीर के लिए अलग अलग प्रकार को यूज करते हैं। आजकल ऐसा ही बाबा भी सबसे बड़ा हीलर, हमारा सुप्रीम हीलर है। बाबा क्या करते हैं, हमारा को फर्स्ट आप आत्मा है, देह नहीं, इससे टी करते हैं। पहले वो शरीर के लिए अलग अलग ब्रेन को, अलग अलग शरीर को, अलग अलग पार्ट को टी करते रहते हैं। बाबा पहले हम लोग को स्मृति दिलाते हैं आप आत्मा है, शरीर नहीं है। सबसे इसी स्मृति से आपको 80% ठीक हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो लोग कॉस्मिक एनर्जी से यूज करते हैं, स्पेस से जो भी एनर्जी होता है अलग अलग, वो हमारा बाबा सुपर एनर्जी से हम लोग जहां चाहते वहां उसी समय आप हील कर सकते हैं। एग्जाम्पल पाव में दर्द हो रहे थे 2 दिन से, एग्जाम्पल क्या करते हैं, अमृत वेला हील कर दे, 70-80% 15 मिनट में ठीक हो गया। ऐसा हर एक व्यक्ति, बहुत पेशेंट्स भी आते हैं, बहुत बार आते हैं, वो बोलते हैं बाबा का स्मृति का फर्स्ट ऑफ ऑल स्मृति का याद दिलाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं और आह्वान करते हैं, एग्जाम्पल जैसा पिरामिड है, रिक्की, ऐसा कुछ बहुत बहुत लोग अच्छा है, वो लोग क्या करते हैं आह्वान करके उसी पर एरिया में बैठ के, उसी स्थान पर बैठ के ओहान करते हैं। बाबा बोलते हैं अमृत वेला आप आ जाओ, आप इसी समय आ जाएंगे तो आपको पूरा सर्वशक्तियां को स्मृति दिलाते हैं बाबा। ऐसा अलग अलग प्रकार का और सत्य ज्ञान देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा क्या करते हैं, ज्ञान, ये ज्ञान से ही हमारा अंदर के जो भी है शुभचिंतन, शुभचिंतक, दूसरों के प्रति शुभचिंतक, इसी प्रकार आपको हीलिंग भी होते है। और सबसे बड़ा वो लोग डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस प्रकार का हीलिंग करना है, इस प्रकार का डाइट भी बोलते हैं, इस प्रकार का डाइट करना है और भोजन के परहेज है और वातावरण को माना, आप सपोज एग्जांपल कुछ फीवर है तो कुछ कुछ तबीयत ठीक नहीं तो आप प्रिकॉशंस करने के लिए कुछ रेमेडी बोलते हैं, कुछ प्रिकॉशंस और एटमॉस्फेयर को आप बाहर जाने के पहले को ढक के रखना, ऐसे संग का रंग, भोजन के परहेज रखते हैं, डाइट बोलते हैं। और बाबा भी क्या बोलते हैं, इधर संग का रंग और ज्ञान का, ज्ञान का संग हमेशा होना चाहिए और डाइट माना वो जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा ही हमारा मन को ठीक करते हैं। पहले मन को ठीक करने के बाद ऑटोमेटिक शरीर को भी ठीक हो जाएगा, आपकी शक्ति भी बढ़ेगा और अपना जो भी सेल्स उत्पत्ति होता है ना, टिश्यूज जो भी है अपना शरीर में, वो भी जागृत हो जाएगा। फर्स्ट बाबा ने क्या सत्य ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान में अपने आप से ऑटोमेटिक सेल्स भी इंप्रूवमेंट होता है, आपको एनर्जी भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। और सत्य ज्ञान से फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं, उसके बाद योग बल, बाबा ने जो बल देते हैं शक्ति, वो शक्ति से अपना शरीर के और आत्मा को भी प्योर बना सकते हैं। और जो भी सेवा करते हैं डिवाइन वैल्यूज से, हमारा कर्म से भी उसको ब्लेसिंग्स भी मिलता है, अलग अलग प्रकार का ब्लेसिंग्स भी मिलता है। और वो लोग क्या करते हैं, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए और नींद, सबसे बड़ा आजकल नींद का प्रॉब्लम बहुत रहता है, नींद नहीं आता है बहुत लोग, बहुत लोग बाहर लोगों को नींद का प्रॉब्लम बहुत होता है, वो नींद को भी सुलाने के लिए वो भी योग करना पड़ता है। हमको बाबा ने इधर सहज रीति से ज्ञान सुनाते हैं, वो ऑटोमेटिक बिना सोचेंगे तो नींद आते। और जो भी इंजुरीज होता है ना, इंजुरीज को रिटेन करते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। हमारा बाबा भी क्या बोलते हैं, ये सुपर एनर्जी से हमको हमेशा सुबह शाम तक स्मृति या जो भी होता है टाइटल सोमान, वो सोमान से हमको जागृत करते हैं। आप ऐसे है, आपका सोमान, आपका स्वदर्शन चक्रधारी पूरा घुमाने के लिए कुछ कुछ टिप्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं। ये टेक्निक से हमारा अपना अंदर स्मृति दिलाएंगे तो ऑटोमेटिक अब हीलिंग हो जाएगा। डिप्रेशन होता है, मेन अपना शरीर को मेंटेन करना, आजकल वो बहुत सोचते हैं, बहुत लोग बोलते हैं शरीर ठीक करेंगे तो, ठीक मेंटेन करेंगे तो आपका सारा जिंदगी भी पार हो जा सकते हैं। बाबा बोलते हैं इधर आपको शरीर भी करना है और मन को भी ठीक करना है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। जो सर्व संबंधों की श्रृंखला चल रही है उसमें जो मुझे टॉपिक मिला है, बाबा मेरा स्क्रिप्ट राइटर है, तो लौकिक दुनिया में भी बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जैसे फिल्मों के होते, सीरियल्स के होते हैं, तो उनमें भी जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें तीन बातों का ध्यान रखते हो, जैसे पहले नायक की भूमिका होती है, प्रस्तावना होता है जिसको आदि का समय बोला जाता है, फिर दूसरा आता है स्क्रिप्ट का भाग मध्य भाग, तो उसमें नायक के साथ खलनायक की एंट्री हो जाती है विलन, और फिर तीसरा होता है अंत, आदि मध्य अंत, कोई भी स्क्रिप्ट का होता है तो अंत में जो नायक खलनायक की फाइटिंग होती है, खलनायक मर जाता है और इसमें सत्य की विजय होती है, अंतिम विजय सत्य की, तो कोई भी स्क्रिप्ट में ये ध्यान रखा जाता है, हैप्पी एंडिंग। तो बाबा भी वेद का स्क्रिप्ट राइटर है, ये 5000 वर्ष की एक स्क्रिप्ट तैयार की है और ऐसी स्क्रिप्ट कोई भी तैयार नहीं कर सकता और वेद की है और ये अनवरत चलती ही रहती है, वंस मोर कहते रहते हैं तो ये ऐसी स्क्रिप्ट है कि अंत में ही इसका आदि हो जाता है तो ये अनवरत चलती ही रहती है। तो इसमें एक कहानी लेते हैं बाइबल की, उसमें उससे थोड़ा क्लियर समझ जाएंगे कि जैसे एडम और ईव की रचना की ईश्वर ने, तो उसमें सब सुविधाएं तैयार कर दिया था उसने, जानवर पशु पंछी खाना पीना सब सुविधा, सत्व प्रधान निर्विकारी सृष्टि। लेकिन जब वो उनको मध्य का समय आता है तो उसमें उन्होंने, ईश्वर ने जब शुरुआत में ही कह दिया था कि एक वादा करो मुझसे कि एक 21वीं पायदान पर जो फ्रूट आएगा उसको नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने खा लेते वो, तो एक प्रकार से उसमें एक शैतान की एंट्री दिखाते हैं कि कैसे वो शैतान उकसाता है वो फल खाने के लिए, तो वो उसमें सांप को भेजता है, सांप के द्वारा वो फ्रूट खाने के लिए वो उकसाता है और वो फ्रूट खा लेते हैं, और जैसे ही फ्रूट खा लेते हैं तो फिर जो ईश्वर होता है उनको उस दुनिया से निकाल देता है कि आपने आज्ञा मानी नहीं, आज्ञा का उल्लंघन किया, और वो दुख की फ्रूट तो प्रकृति का हो या एटोमेटिक, हाँ तो वो खा लेते हैं तो फिर दुख की दुनिया में आ जाते हैं, तो उनको पश्चाताप होता है कि हमने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो उसी में रहते हैं, लेकिन उनको सपने में आता है कि नहीं आपका ये आगे चल के ये सब हिसाब किताब चुक्त हो जाएगा, आप चलते रहो, तो वो चलते ही रहते हैं, और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको फिर विरुद्ध पार्टी भी होती है, कुछ अच्छा करने वाले कुछ बुरा करने वाले, तो इसमें ये लोग अच्छा करते हैं बाइबल की कहानी में, तो इनके विरोधक भी बहुत हो जाते हैं, तो इनमें फिर एक होता है शैतान और एक ईश्वर, तो इसमें भी शर्त लगती है कि कौन किसके जो फॉलोअर्स है वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे, तो उसमें एक दिन फाइटिंग रखते हैं, जो हम फाइटिंग करते फॉलोअर्स, तो फाइटिंग है, तो अनेक प्रकार के दाव पेच होते हैं मैदान में, तो कोई तो ईश्वर के जो होते हैं फॉलोअर्स तो वो भी कम नहीं होते, और माया के भी जो भी होते शैतान के, तो इसमें लड़ाई चलती है, और आखिर करके ईश्वर के जो फॉलोअर्स होती है उनकी जीत होती है, और ईश्वर कहते हैं कि आप चलते रहो और एक नाव तैयार करो, क्योंकि अभी सृष्टि में प्रलय आने वाला है, और नाव तैयार करते हैं, और वो उनको बता दे कि हर पशु पंछी वृक्ष का बीज तैयार रखो नाव में कि प्रलय आने वाली, लेकिन जो माया के फॉलोअर्स होते हैं बहुत हंसते हैं कि नहीं ये तो तैयारी कर रहे कहाँ नहीं जाए दुनिया को, ये डर के भाग रहे ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन सचमुच प्रलय आ जाता है और वो नाव इतना भयंकर बरसात होती है भूकंप बाढ़ जब आती है तो नाव एक पहाड़ी पर अटक जाती है और इधर दुनिया की विनाश हो जाता है प्रलय हो जाता है, तो और वो फिर जब बाढ़ भूकंप सब खत्म हो जाता है तो फिर वो नाव से बाहर आते हैं और एक नया सवेरे देखते हैं और नई दुनिया आ जाती है, तो ये बाइबल में थोड़ा सा है। तो बाबा भी बेहद का जो स्क्रिप्ट राइटर है, तो ये हमें भी इस वर्तमान समय में आकर ये पूरा राज बताते हैं कि तुम ही इस ड्रामा के हीरो एक्टर और एक्ट्रेस हो, और तुम्हें अभी ये पार्ट प्ले करना है, और माया रावण से युद्ध है, तो माया रावण से युद्ध में भी हम कभी हार जाते कभी जीत जाते, तो वो मुक्के लगाती रहती है, हम भी गुस्से लगाते कैसे, जैसे मुरली में आता है ना माया चमाट लगा देती है, गुस्सा मारती है, नाक से पकड़ती है, माथा मुड़ देती है, मुंह फिरा देती है, तो ये चलते रहता है, लेकिन हम कभी मतलब जो कमजोर होते हैं उनके लिए ये खास होता है, बाकी शक्तिशाली होते हैं तो वो लगने ही नहीं देता अपने ऊपर पंच तो इस प्रकार से अभी रियल जो चल रहा है स्क्रिप्ट अभी चल रही है, तो इसको बाबा ने भी कई नामों से कहा है कि ये गीता एपिसोड चल रहा है, बेहद का गीता एपिसोड अभी लाइव चल रहा है, और हम देखते हैं कि लाइव तो है ही, अंत भी होने वाला है और फिर नया सवेर आने वाला। तो अभी हम ये लड़ाई कर रहे हैं माया से, और फिर जीत हमारी होगी, अंतिम जीत हमारी होगी। तो इस प्रकार से जो सृष्टि की जो वेद का जो ड्रामा बनाया, एपिसोड बनाया बाबा ने, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग और संगमयुग, तो 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, सिनेमा है, फिल्म कहेंगे, एपिसोड कहेंगे, तो ये अनवरत चलता है। ये सभी को तो हम ब्राह्मणों को ज्ञान है ही। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। शिव बाबा मेरा स्पिरिचुअल काउंसलर है, तो दुनिया में काउंसलर के पास जाते हैं लोग, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल काउंसलर है ये खुद चल के हमारे पास आए हैं। तो काउंसलर, तो काउंसलिंग की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि उसके लिए शब्द है कि डिप्रेशन में है। तो छोटा है, बड़ा है, स्टूडेंट है, या घर में रहने वाले बुजुर्ग भी है, हर आयु, हर फील्ड, हर जगह पे आज डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, क्योंकि ये दुनिया ही है डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन क्यों आता है? जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं तो बिजनेस में लॉस हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्टूडेंट है, छोटे बच्चे हैं, ज्यादा पढ़ाई का बोझ, घर में मम्मी पापा की फाइटिंग, स्कूल में होमवर्क का बोझ, या कि रैगिंग, किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया तो मुझे ऐसा क्यों कहा, डिप्रेशन छोटी छोटी बातों में आ जाता है। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए आजकल स्कूल कॉलेजेस में भी एक अलग से कमरा रखा है, वहाँ अलग से वो टीचर है कि जिनका फ्रेंडली नेचर है, सबके साथ मिलते जुलते हैं, तो बच्चे जाते हैं टीचर के पास टाइम लेके, और फिर वो उनकी समस्या को सुनते हैं। तो अच्छा जो काउंसलर होता है वो सुनता है, वो गुड लिसनर होता है। तो हमारा यहाँ स्पिरिचुअल काउंसलर तो शिव बाबा है, तो वो तो गॉड लिसनर है हमारा, गुड ही नहीं है तो वो खुद गॉड है। तो हाँ, तो वो हमें अच्छे से सुनता है। फिर अगली स्टेप है सिर्फ सुनना ही नहीं तो उनके साथ कम्युनिकेट करना। अभी कुछ लोग काउंसलर के पास जाते तो है, कुछ लोग होते हैं कि बहुत बोलते हैं, उनको पूछो भी नहीं तो भी वो बताते रहेंगे बताते रहेंगे बताते रहेंगे, बंद ही नहीं होंगे, सब कुछ बताते रहेंगे। और कुछ एक होते हैं कि जो बोलते ही नहीं, उनसे बात निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं कि जो वो बोले, सिर्फ बोले हाँ या ना में नहीं उत्तर दे, कुछ और वर्णन करे। वैसे बाबा भी स्पिरिचुअल काउंसलर सुबह सुबह आते हैं और मुरली में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी ऐसी बातें निकाल देते हैं जो हमारी बुद्धि में, ब्रेन में ब्रेनस्टॉर्मिंग होने लगता है। सोचने के लिए बाबा हमें मजबूर कर देता है और बोलने के लिए भी मजबूर कर देता है कि जो बोलने वाले है ही नहीं उनको कंठी वाला तोता बना देता है बिल्कुल। तो सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन। फिर अगली स्टेप है रिलेशन, कि रिलेशन संबंध नजदीक का है तो वहां विश्वास, फेथ आ जाता है कि सामने वाले को हम बात छिपाएंगे डॉक्टर के सामने, वकील के सामने, कहते कि कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, तभी आपकी बात का सोल्यूशन या प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो इस काउंसलर को हर, और जो क्लाइंट है, काउंसलर है और उसका जो क्लाइंट है, उनके बीच में विश्वास की बहुत जरूरी है कि क्लाइंट कुछ सॉल्यूशन बता रहा है तो क्लाइंट को काउंसलर कुछ सॉल्यूशन बता रहा है तो उसके ऊपर उसका विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन और फिर उसमें जो फेथ है, विश्वास है, वो होना आवश्यक। फिर ऐसे नहीं कि काउंसलर अपनी बात थोप दे सामने वाले पर कि आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही हुआ था और ऐसे ही करना है। नहीं, कुछ ऑप्शंस रखे क्लाइंट के सामने, देखो कि इस कंडीशन में ऐसे किए तो ऐसे हो सकता है, ऐसे किए तो ऐसे हो सकता है, कुछ ऑप्शंस रखे और वो क्लाइंट खुद चूज करे कि हाँ मुझे ये मार्ग अच्छा लगता है, तो वो अपनी खुशी से अपना मार्ग ढूंढे। ये नहीं कि जबरदस्ती उसको ऊपर थोपा जाए कि तुम यही करना है, बस हमने भी यही किया था और आपको भी यही करना है, देखो। तो वो फिर और डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको लगेगा ये ना हमारे ऊपर थोप रहे हैं कुछ ना। फिर बात का सॉल्यूशन दे दिया, ऐसे नहीं कि हो गया अभी काम पूरा, कुछ दिनों के बाद उसको मिलना है, उससे रिजल्ट भी पूछना है कि क्या भाई कैसे चल रहा है वो। हाँ, जो क्लाइंट है उसको, काउंसलर को उसे जाके मिलना चाहिए। जैसे बाबा हमें छोड़ता नहीं है, नहीं लगेगा कि उसकी भी युक्ति है, जैसे बाबा उसको अपनापन फील होता है, तो बाबा भी हमारा फॉलोअप लेता रहता है, उससे डर नहीं लगता कि अपनापन घरेलू है, हमारा ही कोई है, ऐसे लगता है। तो आज जो है ये डिप्रेशन, तो डिप्रेशन को अगर काउंसलिंग नहीं मिलती है तो बात बहुत बिगड़ जाती है। फिर वो एक डिप्रेशन वाला अन्य लोगों को भी डिप्रेशन में डाल देता है। ये बहुत ही जैसी छूत की बीमारी होती है, वायरल बीमारियां होती है ना, वैसे है। अगर देखो बच्चा डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में कई कारण होते हैं कि वो अपने गोल को फिक्स कर लेता है कि मुझे 98 मार्क्स चाहिए और उसको मिल गए 96, डिप्रेशन में चला जाता है कि अभी उसने अगला सारा प्लानिंग किया होता है, 98 मिलेंगे फिर मैं मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा, फिर मुझे ये कॉलेज मिलेगा, फिर मैं ये पढ़ाई इतने दिन तक पूरी करूंगा, फिर ऐसी जॉब मिलेगी, फिर ऐसी सैलरी मिलेंगी, ये सारा उसका फुल प्लान होता है। अगर उसको 98 के बदले 96 मिल जाते हैं तो वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। अब सुसाइड कर लिया तो उसके माता पिता डिप्रेशन में चले जाएंगे, उसके जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनको लगेगा अरे ये तो कितना अच्छा था, इतने अच्छे व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, वो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो फिर मुसीबत आ जाएगी। तो इसलिए कोई भी बात को इतना इसे फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो गोल हमें अपना एम रखना है फिक्स, इतना फिक्स नहीं करना है कि हम डिप्रेशन में चले जाए। ये बात हो गई बच्चों की, उनके माता पिता की। और भी फील्ड है जहां पर लोग क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन। तो स्पिरिचुअल डिप्रेशन, आध्यात्मिकता में भी डिप्रेशन है और उसको दूर करने वाला स्वयं शिव बाबा है। तो शिव बाबा आया है हमें सारे प्रकार के डिप्रेशन से मुक्त कराने के लिए। तो ऐसे डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए हमें अटेंशन की जरूरत है कि जिसमें राजयोग के कारण हमें वो बातें सहज आ जाती है, जैसे कि सहनशीलता, किसी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, धैर्यता। अगर ये गुण हमारे में नेचुरली है तो हम कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। डिप्रेशन की और भी ड्रामा का ज्ञान है, नथिंग न्यू, हर एक का अपना अपना पार्ट है, साक्षी दृष्टा रहना। तो एक होता है सेल्फ काउंसलिंग, तो सेल्फ काउंसलिंग बाबा हमें यहाँ पर सिखाते हैं, वो काउंसलर आके हमें सेल्फ काउंसलिंग भी सिखाते हैं। कि देखो छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, बचपन में ही सिखाया जाता है कि बाहर अंधेरा है, बाहर नहीं जाना, उधर भूत है, उधर इविल सोल है, उधर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। तो तो उनको सही बात सिखाना बहुत आवश्यक है कि वहां भूत है नहीं, कि उनको सिखाना चाहिए कि इस समय में उधर नहीं जाना चाहिए, उनको सच्चाई का ज्ञान देना चाहिए न कि झूठा। भूत है तो वो डर जाएगा और डिप्रेशन में, आप तो डराते रहते हो। नहीं कभी नहीं। तो हाँ, तो डिप्रेशन सिर्फ बाह्य परिस्थितियों के कारण ही नहीं आता है, मन में डिप्रेशन, अंदर कुछ केमिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, या केमिकल लोचा बोलेंगे, या फिर पिछला जो है हिस्सा, पिछली जो हमारे संस्कार है, पिछले जन्मों के भी है, तो अचानक जागरूक हो जाते। तो ऐसे समय माना पता है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो व्यक्ति खुद फील करता है कि ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी हो तो गया है, तो उसके लिए क्या करना है। और कुछ एक होते हैं कि मानते ही नहीं, वो बोलते कि मैं राइट हूं, गलत सामने वाला ही है, तो उसके लिए उसके पास बड़ी लंबी लिस्ट होता है, ड्रामा का ज्ञान होता है और बहुत सारी बातें, वो बड़ी चतुराई से अपने आप को प्रूव करता है कि मैं राइट हूं बस, और सामने वाला गलत है। तो वो भी डिप्रेशन का ही एक प्रकार है। उसके लिए काउंसलर की आवश्यकता है, तो काउंसलर खुद स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो दूसरे को काउंसलिंग करते करते खुद ही डिप्रेशन में न चला जाए। हाँ, समय देना आवश्यक है। तो शिव बाबा आया है तो हमें भी थोड़ा समय निकालना है और इस काउंसलर के साथ बातचीत करनी है, अपनी और अन्य आत्माओं की भी समस्याओं का हल करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए उस काउंसलर से हमें टाइम देना आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।